नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, वनकम, सुस्वागतम एंड पधारो इन योर फेवरेट शो समाधान। मित्रों, कहते हैं कि जब ज्ञान भोजन में प्रवेश करता है तो भोजन प्रसाद बन जाता है, जब ज्ञान भूख में प्रवेश करता है तो भूख वास्तव में व्रत बन जाता है, जब यही ज्ञान पानी में प्रवेश करता है तो ये पानी अमृत बन जाता है, जब ज्ञान संगीत में प्रवेश करता है तो संगीत भजन बन जाता है, जब ये ज्ञान कर्म में प्रवेश करता है तो कर्म कर्मयोग बन जाता है, जब ये ज्ञान क्रिया में प्रवेश करता है तो क्रिया सेवा बन जाती है, जब ज्ञान यात्रा में प्रवेश करता है तो यात्रा तीर्थ यात्रा बन जाता है, जब ज्ञान घर में प्रवेश करता है तो घर मंदिर बन जाता है, और जब यही ज्ञान इंसान में प्रवेश करता है तो इंसान देवता बन जाता है। ज्ञान का इतना महत्व है, इसीलिए शायद सद्ज्ञान के लिए हम सदियों से भटकते रहे हैं कि हे ईश्वर, हमें सद्ज्ञान दीजिए। ज्ञान के बिना जीवन शून्य है, महत्वहीन है, और ज्ञान के बिना हम भटक जाते हैं, इसीलिए लगातार एक सद्ज्ञान की आवश्यकता होती है। और समाधान एक सुंदर ज्ञान आप तक पहुंचा रहा है। आइए सुंदर ज्ञान के साथ, इन सुंदर बातों के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है।
शुक्रिया।
ज्ञान का बड़ा महत्व रहा है भ्राता जी, जैसे कि इन सभी का जीवन में जैसे प्रवेश होता है तो सचमुच मनुष्य देवत्व की ओर बढ़ने लगता है।
ज्ञान तो अमृत है, ज्ञान ही प्रकाश है जो मनुष्य को राह दिखाता है। जिस मनुष्य के पास ज्ञान नहीं है वो तो अज्ञान के अंधकार में भटक कर न जाने कहां कहां चला जाता है, क्योंकि उसे मंजिल का पता नहीं होता है। और इसमें भी बड़ी बात देखिए, आज तक तो लोग ज्ञान ढूंढते रहे ग्रंथों में, शास्त्रों में, खोज होती रही सत्य की, लेकिन जब स्वयं परम सत्य इस धरा पर आकर अपना सत्य ज्ञान देते हैं तो उस ज्ञान से मनुष्य में छुपा हुआ देवत्व उभर जाता है और ये संसार स्वर्ग बन जाता है। इसलिए ज्ञान को सबसे बड़ा खजाना भी कहा जाता है, और जिसके पास ये खजाना हो वो बहुत धनवान माना जाता है।
बिल्कुल, इसीलिए लौकिक में तो ज्ञान हम प्राप्त करते ही हैं, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा आवश्यकता शायद सद्ज्ञान की हो जाती है, जिस सद्ज्ञान से जीवन में प्रकाश आता है, आप कह रहे हैं।
यही ईश्वरीय ज्ञान बहुत श्रेष्ठ है जो ईश्वर से मिलाता है। बिना इसके कोई भी मनुष्य अपने परमपिता से नहीं मिल पाता है। रही बात उस ज्ञान की जो स्कूल कॉलेजों में दिया जाता है, वास्तव में वो तो बहुत छोटा सा ज्ञान है, वो तो इन्फॉर्मेशन है। असली ज्ञान तो ईश्वरीय ज्ञान है जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है, जो मनुष्य को जीना सिखाता है।
बिल्कुल। तो भ्राता जी, ये इस ज्ञान से, जैसे अंतिम पंक्ति मैंने कही कि ज्ञान से ये कहा जाता है कि मनुष्य देवता बन जाता है, कौन सा ऐसा ज्ञान है जिसको जीवन में लाने से मनुष्य देवत्व की ओर बढ़ने लगता है या देवता बन जाता है?
गुरु ग्रंथ साहब में तो ये सुंदर पंक्ति बहुत ही प्रभावकारी प्रेरक है, मानुष से देवता की करत न लागी वार। भगवान ही मनुष्य को देवत्व प्रदान करता है, और भगवान भी वो देवत्व प्रदान करता है उसको सत्य ज्ञान देकर, उसको उसके वास्तविक स्वरूप की स्मृति दिलाकर। शास्त्र ग्रंथों के ज्ञान से क्या हुआ कि मनुष्य को अपने स्वरूप की स्मृति नहीं हुई, वो विस्मृत ही रहा, और परमात्मा आकर संपूर्ण सत्य ज्ञान देकर, तुम आदि में क्या थे, तुम आदि से भी पहले कहां थे और क्या थे, और तुम्हारे जीवन में ये गिरावट कैसे आई, ये परिवर्तन कैसे हुआ, तो स्मृति दिलाकर हमें स्मृति स्वरूप बनाते हैं और याद दिलाते हैं कि तुम सतयुग में यानी आदि काल में देवता थे। सतयुग त्रेता युग तुम्हारा देव स्वरूप में व्यतीत हुआ, तो तुम्हारे अंदर वो संपूर्ण देवत्व विराजमान है जो दिख नहीं रहा है। अभी याद दिलाकर और योग सिखाकर वो मनुष्य के अंदर के छुपे हुए देवत्व को उजागर करते हैं और मनुष्य देवत्व की ओर अग्रसर हो जाता है।
बिल्कुल, मतलब उस ज्ञान की आवश्यकता है, उस ज्ञान को जीवन में लाने की आवश्यकता है ताकि हम देवत्व की ओर बढ़ें। तो क्या भ्राता जी, सभी मनुष्य आत्माएं इस ज्ञान को धारण करके देवत्व की ओर बढ़ पाती हैं, या इस ज्ञान को समझने में भी कुछ विशेष बुद्धि या प्रयास पुरुषार्थ की आवश्यकता होती
है? देखिए, ये ज्ञान तो सबके लिए है, जो समझे सबके लिए है, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी नेशन का हो, इसमें कोई भेदभाव नहीं, क्योंकि परमात्मा सबके पिता हैं। और जो उसके इस ज्ञान को लेते हैं वो मनुष्य देवता बन जाते हैं, और जो थोड़ा भी ले लेते हैं उन्हें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए वो परमपिता होने के कारण सबको देता है अवश्य, लेकिन शर्त यही है जो पवित्र बने, जो ज्ञान को धारण करे जीवन में, जो राजयोग से परमात्मा की शक्तियां स्वयं में प्राप्त करके मनोविकारों पर विजयी बने, वो देवता बन जाते हैं।
बिल्कुल। लेकिन जब हम देवता शब्द कहते हैं प्रताप जी, तो बहुत सारे जो धर्मावलंबी हैं उन्हें सीधे सीधे तौर पे लगता है कि ये तो हिंदू धर्म की बात हो रही है, क्योंकि हिंदू धर्म में ही देवी देवताओं की मान्यता है, अन्य धर्मों में तो देवी देवताओं की मान्यता नहीं है। तो क्या ये कहें कि ये जो परमात्मा ज्ञान देते हैं ये केवल हिंदू धर्म के लिए है जो देवी देवता बन जाते हैं? सभी धर्म वाले तो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
देखिए, लक्ष्य है मनुष्य के अंदर छुपे हुए देवत्व को जागृत करना। अभी देवत्व किसके अंदर है ये विचारणीय विषय है। सतयुग और त्रेता युग में मनुष्य आत्मा देव स्वरूप में थी, और उस समय की जनसंख्या बहुत थोड़ी थी। शुरू में तो 9-10 लाख, और धीरे धीरे उसमें वृद्धि हुई, क्योंकि संतान भी ज्यादा नहीं होती थी, 2 बाद में 3 बस। तो बहुत धीमी गति से जनसंख्या की वृद्धि हुई। तो जिनके अंदर वो देवत्व था, जो द्वापर के बाद पुनः मनुष्य कहलाए और जन्म लेते लेते अब कलयुग के अंत में आ गए, तो जिनके अंदर वो देवत्व था, ज्ञान सुनकर परमात्मा से योग लगाकर उन्हें ही अपने देव स्वरूप की स्मृति आती है। जो देवता नहीं थे, क्योंकि नहीं थे सब, हम देख सकते हैं मुस्लिम धर्म उसके स्थापना से पहले नहीं था, मतलब इब्राहिम से पहले या मोहम्मद साहब से पहले वो नहीं था, क्रिश्चियन धर्म क्राइस्ट से पहले नहीं था, बुद्ध धर्म बौद्ध से पहले नहीं था, और इनको 2500 साल के अंतर्गत ही सबको दिखाया गया है। तो बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें किसी को कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं कि इससे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था। तो उन्हीं आत्माओं को यहाँ पर वो जागृति आती है और उन्हीं का देवत्व निखर जाता है, बाकी जो आत्माएं जो बाद में आई हैं उन्हें मुक्ति मिल जाती है।
बिल्कुल, मतलब ये ज्ञान या तो जीवन मुक्ति देता है या मुक्ति देता है, मतलब ज्ञान से ये दोनों ही प्राप्तियां होती हैं, जिसे जिस चीज की इच्छा हो। कहते हैं कि यदि किसी को भूख लगी हो तो भोजन ही खाता है, प्यास लगी हो तो पानी ही पीता है। तो शायद सभी अपने अपने अनुसार जीवन मुक्ति और मुक्ति को ग्रहण कर लेते हैं इस ज्ञान के आधार पर। पता जी, इससे पहले कि मेल की ओर आऊं, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो इस पंक्ति में थी कि ज्ञान जब घर में प्रवेश करता है तो वो मंदिर बन जाता है। तो वैसे भी आप हमेशा कहते रहते हैं कि घर घर को हम मंदिर बना दें, तीर्थ की तरह बना दें, तो कौन सा ज्ञान प्रवेश करे, क्या करें, ज्ञान की कौन सी बातों का ध्यान रखें जो घर मंदिर बने?
देखिए, स्कूल कॉलेजों का ज्ञान है वो तो घर घर में प्रवेश कर ही चुका है
जी,
लेकिन उसने तो मनुष्य को न देवता बनाया न घर को मंदिर बनाया, सब बिल्कुल स्पष्ट है। ईश्वरीय ज्ञान जब मनुष्य के जीवन में उतरेगा, घर घर चार दीवारी का नाम नहीं, घर है घर में रहने वालों से, घर में रहने वाले मनुष्य जब इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे और राजयोग का अभ्यास करके अपने जीवन को मनोविकारों से मुक्त करेंगे, क्रोध से मुक्त, अभिमान से मुक्त, व्यर्थ की आसक्तियों से मुक्त, एक ऐसा पवित्र जीवन जब जिएंगे तो घर मंदिर बन जाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल, मतलब घर घर मंदिर ज्ञान की इस धारणा से ही बन सकता है। पता चलिए, मेल्स की ओर लिए चलता हूँ। पहला मेल हमारे पास लक्ष्मणन जी ने भेजा है एपी से, और ये कहते हैं कि हमारे नए सेंटर के लेफ्ट साइड में कई लोग ऐसे हैं जो मांसाहारी हैं, उनका काम ही यही है, वो बकरे को मार देते हैं और उसके बाद उसको लटका देते हैं। सभी कार्य वो लोग वहीं पे अपने घर के सामने ही करते हैं। अब अनलकीली हमारा जो नया सेंटर है ठीक वो वहीं पे है, उसके अपोजिट साइड में ही ये सारी चीजें करते हैं। कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी जब हम लोग वहां पे जाते हैं तो उसकी बहुत ज्यादा बदबू आती है, और अब सभी चिंतित हो गए हैं कि वहां पे कैसे हम ज्ञान की बातें सुनेंगे, लोग तो वहां पे कम आएंगे, तो हम उसके लिए क्या करें? और दूसरी बात ये भी कहते हैं कि उस साइट पे जिसका वो उस जिसकी वो जगह है, उनसे हमने मालिक से बात की तो वो ये कहते हैं कि क्या करें, वो बेचारों का तो पेट ही इसी से पलता है, तो इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो हम चिंतित हैं कि क्या करें। तो बताइए इसके लिए क्या किया जाए?
हाँ देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है कि आश्रम जैसा पवित्र कार्य ऐसी जगह पे तो नहीं चल सकता, अच्छे लोग तो वहाँ कदापि आएंगे नहीं,
क्योंकि उन्होंने कहा बदबू भी आती रहती है
और वहाँ तो वाइब्रेशन ही बहुत नेगेटिव रहते हैं, इसलिए इन्हें उस स्थान को चेंज करना ही पड़ेगा या सरकार से बात की जाए भाई इनको कोई और स्थान दे दिया जाए जहाँ इनका ये कारोबार भी चले, वो भी जैसे भी है बेचारे अपना कारोबार चलाते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ आश्रम जैसा पवित्र कार्य नहीं हो सकता। आश्रम तो एक बहुत ही सब्दी बहुत सुंदर है पवित्र, और वहाँ तो लोग शांति के लिए, खुशी के लिए और अपनी स्पिरिचुअल उन्नति के लिए आते हैं, इसलिए ये लोग योग कर लें किस दिन और कुछ भी समाधान निकल जाएगा, चाहे वो सेल हो जाएगा चाहे इनको सरकार को दूसरी जगह दे देगी।
बिल्कुल। और भाई जैसे कई लोग ये कहते हैं कि भाई ये तो उनकी रोजी रोटी है, तो ऐसी चीजों को क्या अपनी रोजी रोटी का साधन बनाना चाहिए?
अब देखिए कुछ लोगों की रोजी रोटी ये है ही, कुछ जाति ऐसी हैं जिनके धंधे ही ये हैं, अभी वो और क्या करेंगे, ये तो कई लोग चेंज भी कर लेते हैं अपनी जॉब को, लेकिन उनके बच्चे अगर पढ़ लिख लेते हैं तो वो इस कार्य में नहीं लगते, लेकिन आज खाने वालों की संख्या बहुत है इसलिए उनका काम इससे बहुत जोरदार चलता है, तो वो भला क्यों छोड़ेंगे, और उनको तो इसकी आदत पड़ी हुई है, उन्हें न बदबू आती न कोई रहम आता है कि भाई वो बकरे को या मुर्गे को मार रहे हैं, उनका तो रोज का काम है और कई कई बार का काम है, इसलिए उनके बारे में तो कुछ भी कहना सोचना उचित नहीं है, लेकिन अपनी व्यवस्था हमें देख लेनी चाहिए
क्योंकि ये अब सेंटर वहाँ बन रहा है बेटा जी, कंस्ट्रक्शन वहीं पे चल रहा है, अब ये तो इनके लिए भी शायद पॉसिबल नहीं होगा कि अब उसको सेल करें दूसरी जगह देखें, क्योंकि आजकल जमीन मिलना फिर उस पर कंस्ट्रक्शन करना ये भी तो सहज काम नहीं है।
नहीं, योग अभ्यास करेंगे तो कोई ना कोई साधन निकल जाएगा, और जैसे मैंने कहा सरकार से SDM आदि से बात करेंगे, MLA से, तो वो इनको दूसरी
जगह दे देंगे। बेटा जी एक विशेष चीज, जैसे कई बार मैंने आपसे बात की है कि कई लोग पशुओं की बलि आदि चढ़ाते हैं, चलिए वो तो देवी देवताओं के पास कभी कभी यदा कदा ओकेजनली करते हैं, लेकिन जो इस प्रकार के कार्य करते हैं जो पशुओं की हत्या होती है, चाहे वो बकरे हैं चाहे मुर्गे हैं, उन्हें मारना काटना खाना, तो ये तो बहुत ही घृणित सा कार्य लगता है। और बहुत सारी आजकल सेलिब्रिटीज भी हैं बताए जी, मैंने कुछ दिनों पहले सुना कि आमिर खान साहब हैं, उन्होंने भी अब मांसाहार का त्याग कर दिया और शाकाहार की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बढ़ रहे हैं, तो वैसे नैतिक दृष्टि से मानवीय दृष्टि से ये ठीक भी तो नहीं लगता है कि ये कार्य हो?
बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और जो देवकुल की आत्माएं हैं उनको तो इनसे नफरत आनी ही चाहिए क्योंकि ये मानवीय भोजन नहीं है, इसलिए इसका सेवन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सरकारें भी कई काम करती हैं लेकिन कोई इसमें सफल नहीं हो रहा है। हाँ, अगर कुछ फिल्मों की हस्तियां ये काम करने लगे और इसका प्रचार हो जाए तो, क्योंकि फिल्म के एक्टर और एक्ट्रेस से लोग ज्यादा प्रभावित हैं, तो शायद काम बन जाए।
जी जी, जैसे आमिर साहब ने एक अच्छी पहल की है और बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं बेटा जी जो इसकी
नहीं करना ही चाहिए। हमारे एक्टर और एक्ट्रेस जो बहुत फेमस हैं इस तरह, उन्हें अब ये सोचना चाहिए कि उन्हें चक्का कल्याण करना है, इसलिए आदर्श प्रस्तुत कर देना है, क्योंकि उन्हें फॉलो करने वाले विशेषकर युवक तो बहुत ही हैं, इसलिए बुद्धिमान हैं वो सभी, और हमारी शुभ भावनाएं हैं कि उन्हें भगवान की ओर से ऐसी बुद्धि प्राप्त हो कि वो कम से कम, मैं भारत के लिए कहूंगा कि भारत का तो कल्याण करें, इसको स्वर्ग बनाने में बहुत बड़ा योगदान ये लोग दे सकते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। कई बार हमारे पास सोशल मीडिया में बताते जी ऐसी चीजें भी आती हैं, जैसे गौ वध होता है, अब हिंदू धर्म में तो विशेष करके गौ को माता कहा जाता है, उसका इस प्रकार वध करना वो धार्मिक भावना को भी ठेस पहुंचाता है और मानवीय दृष्टि नैतिक दृष्टि से जैसे हमारी बात हो रही है वो भी ठीक नहीं है, तो इस विषय पे भी आपकी टिप्पणी चाहूंगा।
बिल्कुल, टिप्पणी वही है जो सबकी मान्यता है। देखिए गाय को लोग माता कहते हैं या क्या, ये तो अलग बात है, लेकिन पीछे एक बहुत अच्छी चीज जानने को मिली कि गाय के पास खड़े रहने से, उसके पास बैठने से
जी,
उसकी वेव्स, उसके वाइब्रेशंस इतने सुंदर आते हैं कि मनुष्य कई बीमारियों से मुक्त हो सकता है। ये मुझे नई बात सुनने को मिली थी, व्हाट्सएप पे सब आया, तो मैं सोचा इसीलिए लोग घरों में गाय रखते थे, नहीं तो वैसे तो लोग कई बात कहते हैं गाय मार रही है तुम्हें, सींग मार रही है, लात मार रही है, वो तुम्हारी माता कैसे, माँ थोड़ा ऐसे करेगी, वो तो एक भावनात्मक बात है, परंतु देखिए उसके गोबर से, उसके मूत्र से, हर चीज
उनकी हर चीज
यूजफुल है और बहुत अच्छी तरह यूजफुल है, आजकल तो बहुत उसका प्रचार प्रसार हो गया है, इसलिए वध तो बिल्कुल घृणित कार्य है और ये तो सरकारों का काम है इन पे रोक लगाए, और इस फील्ड में हमारे साधु संत भी काफी आवाज उठाते रहते हैं, अभी भी उठाई हुई है, तो इस पे तो गौर करना है,
एक अवेयरनेस लाई जानी चाहिए। कई लोग ऐसे हैं प्रताप जी, जो गाय वृद्ध हो जाती है ना, तो उसको फिर ऐसे बूचड़ खाने में दे देते हैं, तो ऐसे लोगों पे भी थोड़ी सी नाराजगी होती हाँ। है कि जीवन भर जिसने आपको दूध दिया, गोबर दिया, इतनी आपकी सेवा की, आप उसके जीवन के अंत में उसकी सेवा ना करके उसको वहां पहुंचा देते हैं जहां नहीं पहुंचाना चाहिए।
हाँ, ये भी गलत है। देखिए, सेवा भी की और फिर उसको उसकी नेचुरल मौत ही मरने देना चाहिए, यही मानवता है। मनुष्य में आजकल लोभ इतना हो गया कि चलो 200 रुपए मिल रहे हैं ना, ये भी कहीं काम आ जाएंगे, परंतु इस लोभ का त्याग कर मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन ही करना चाहिए।
बिल्कुल। चलिए बेटा जी, हम सब कामना करेंगे कि इस प्रकार की सारी चीजें समाप्त हो और हमारा देश फिर से स्वर्ग तुल्य बने, क्योंकि स्वर्ग में तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि नहीं
होंगे।
जी बेटा जी, अगला मेल हमारे पास आया है उत्तराखंड से, शर्मा जी हैं, ये कहते हैं कि हम लोग अपनी ओर से पूर्ण रूप से प्योर और पॉजिटिव लाइफ जी रहे हैं, किंतु बीच बीच में कुछ लोग हमारे प्रति नेगेटिव एक्शन करते हैं और फीलिंग भी, जिससे बहुत हानि और हर्ट होता है। यदि परमात्मा है तो क्या कारण है कि वो उनको सजा नहीं देते हैं? ये कह रहे हैं हम तो पवित्र हैं, अच्छे हैं, लेकिन दूसरे हमारे लिए गलत गलत कमेंट्स करते हैं, तो भगवान उनको सजा दे।
चलो, इनकी बात हम भगवान तक पहुंचा देते हैं कि वो अभी कोर्ट लगाए और जो ऐसे लोग गड़बड़ कर रहे हैं, अच्छे मार्ग पे चलने वालों को सता रहे हैं, उनके लिए भी कुछ प्रावधान वो करे। वास्तव में प्रावधान तो ऑटोमेटिकली विश्व की रचना में है। वो उनको कई तरह से हानि होती है, वो भगवान से दूर रहते हैं। पर मैं इनको एक बात कहूंगा, देखिए, जो सत्य के मार्ग पे चलते हैं, जो परमात्म मार्ग के राही बनते हैं, उन्हें ये सब सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या मीरा ने सब कुछ नहीं सुना? क्या स्वामी विवेकानंद ने सब कुछ नहीं सुना? इवन महात्मा गांधी ने कितना सुना, नरसिंह मेहता ने कितना सुना, लोग पागल कहते थे इन सबको। तो एक ये ऐसा मार्ग है कि इस पे चलने वालों को ये सब चीज सुननी पड़ती, इसलिए हर्ट होने की बात नहीं। जब इन्हें ईश्वरीय ज्ञान मिल गया है तो इनका काम है अपने को बहुत स्ट्रांग बनाना, हर बात को लाइटली लेना और अपने को इतना स्ट्रांग बनाना कि उनपे हंसी आने लगे। देखो, ये बेचारे कितने भोले हैं, अज्ञान के वश हैं कि अपने परम पिता को पहचानते ही नहीं, तो मुस्कुरा दिया करें बस। जब वो कुछ कहें, रिएक्शन कुछ न करें और मुस्कुरा दिया करें, तो वो भी समझ लेंगे कि भाई ये काफी स्ट्रांग है, इन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, हम ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं,
व्यर्थ तीर छोड़ रहे हैं। दादा जी आगे भी ये कहते हैं कि जबकि दुखी होने पर हमारी नेगेटिव वाइब्रेशन उन तक पहुंचनी चाहिए, अपनी गलती का रियलाइजेशन होना चाहिए, लेकिन हमारी शायद दुख के वाइब्रेशन उन तक नहीं पहुंच रहे हैं और वो उनको कोई रियलाइजेशन ही नहीं हो रहा है, मतलब इनको, ये खुद बहुत दुखी हो रहे हैं।
इनको अपने दुख के वाइब्रेशन पहुंचाने ही नहीं चाहिए, सुख के वाइब्रेशन पहुंचाने चाहिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन पहुंचाने चाहिए। और छोटी सी विधि मैं इनके सामने रख देता हूँ, जिसके रिजल्ट आज तक बहुत सुंदर आ रहे हैं। सवेरे उठकर 7 बार याद करेंगे, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, और उन सबको आत्मा देखकर संकल्प करेंगे, दे आर माय गुड फ्रेंड, दे आर आवर गुड फ्रेंड्स, वो बहुत अच्छे हैं, दुख के क्यों, वो बहुत अच्छी आत्माएं हैं, वो भी भगवान के बच्चे हैं, एक दिन वो भी इधर ही आ जाएंगे, जैसा आज तक होता आया है। लाखों लोगों की कहानी है, लाखों की, जो ऐसे गिलानी करते थे, कमेंट्स करते थे, अब वो आ गए और सोचते यार हम ये क्या करते रहते थे, पछताते रहते, माफी मांगते रहते उनसे। तो इन्हें इस तरह के संकल्प सवेरे उठ के करने चाहिए, तो वो जल्दी इनके गुड फ्रेंड और सहायक बन जाएंगे।
बिल्कुल बिल्कुल, कई लोग बिल्कुल पीछे ही पड़ गए होते हैं भ्राता जी, इसीलिए थोड़े से नाक में दम कर देने वाली स्थिति हो जाती है, तो फिर इस प्रकार की नेगेटिव फीलिंग खुद के
होती है,
क्योंकि एकदम हम पहुंचे हुए संत तो नहीं हो गए हैं कि हमारा मन एकदम शांत रहे, स्थिर रहे, पॉजिटिव रहे, कहीं ना कहीं ये भावनाएं आ ही जाती हैं।
लेकिन करने वाला तो ये काम करता ही रहेगा, इसलिए जब करने वाला अपना बुरा काम करना नहीं छोड़ता, तो हम अपनी मुस्कुराहट क्यों छोड़ें, हम दुखी क्यों हों? हम संकल्प कर दें कि कोई बात हमारे सुख को हमसे छीन ही नहीं सकती, सारा संसार ट्राई करके देख ले, हमें कोई दुखी कर ही नहीं सकेगा, हम तो सुखदाता के बच्चे हैं, सुखों के सागर के बच्चे हैं, वैसे भी मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, तो मुझे तो सुखी ही रहना है।
जी जी जी, मतलब एक संकल्प कर लिया जाए। और वैसे भी कहते हैं कि यदि दुर्जन अपनी दुर्जनता नहीं छोड़ रहा है, तो सज्जन को अपनी सज्जनता भी नहीं छोड़नी चाहिए। प्रथा जी, अगला हमारे पास मेल आया है सरिता जी का जमशेदपुर से। ये कहते हैं कि मेरे बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, कहीं बात बनती है और फिर बनते बनते बिगड़ जाती है, क्या करें। और ठीक ऐसा ही इंदौर से दुर्गा जी का भी है। प्रथा जी कहते हैं कि मेरी लड़की की शादी नहीं हो पा रही है, उसकी उम्र निकलती जा रही है, अच्छे रिश्ते आते हैं और अच्छे रिश्ते आने के बाद लास्ट मोमेंट पे वो जो है वो कैंसिल हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है, हम परेशान हैं। तो दोनों चीजें प्रथा जी, एक तो उम्र निकलती जा रही हो खास लड़कियों की, तो पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं।
देखिए, कार्यों की सफलता के लिए, वैसे तो राजयोग इन चीजों के लिए नहीं है, राजयोग का तो अर्थ है आत्मा को प्योरीफाई करना, जन्म जन्म के विकर्म विनाश करना। फिर भी इनके सामने भी अगर कोई विकर्म खड़े हैं तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, ये स्वमान 7 बार याद करके ये 21 दिन तक 1 घंटा रोज पावरफुल योग करें तो इनके रुके हुए काम बन जाएंगे।
तो मतलब लास्ट में जो बातें कैंसिल हो रही हैं, बिगड़ रही हैं, वो चीजें ठीक हो जाएंगे जी। भ्राता जी, ये हमारे पास अगला मेल है पावनी का। ये कहती है कि मैं पावनी हूँ और मैं सिस्टर शिवानी की तरह बनना चाहती हूँ, जैसे वो सेवा कर रही है मैं भी करना चाहती हूँ, अभी मैं ग्रेजुएट कर रही हूँ, क्या मुझे पढ़ाई पूरी करनी चाहिए या इस सेवा में लग जाना चाहिए, मैं समर्पित भी होना चाहती हूँ। पावनी ये चाहती
है। बिल्कुल, इन्हें शिवानी दीदी के साथ ही जाके रहना चाहिए अगर शिवानी दीदी अलाउ करे तो, क्योंकि वो भी अपने घर में रहती है, वो इनको, लेकिन ये हमारे सेवा केंद्र पे तो रह ही सकती हैं, इन्हें अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लेनी चाहिए और फिर पहले सेवा केंद्र पर जाकर देखना चाहिए, एक एक मास रह के, 3 मास रह के, कि ये वो त्याग भरा जीवन और तपस्या से संपन्न जीवन कितना सुखपूर्वक व्यतीत कर सकती है, क्योंकि वहां सबको संगठन में भी रहना होता है, बहनें एक साथ रहती हैं, कहीं 10 बहनें भी रहती हैं, कहीं 5 रहती हैं, कहीं 3 भी रहती हैं, तो बहनें आपस में कितना मिलजुल के रहती हैं, एक दूसरे को सहयोग दे के, अंडरस्टैंडिंग के साथ संस्कार मिलाते हुए साथ रहती हैं, तो ये उस कार्य में कितनी सफल हैं, पहले उन्हें ये देख लेना चाहिए। और फिर हमारे यहाँ टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, वहीं की बहनें इन्हें ट्रेनिंग में भेजेगी और फिर आगे का मार्ग इन्हें सोच समझ कर निश्चित कर।
बिल्कुल, मतलब अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। और वैसे भी ब्रदर जी, शिवानी बहन जी ने भी अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो इन्हें भी ये लक्ष्य रखना चाहिए कि मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट तो जरूर बनूं, टॉपर बनूं, क्योंकि जिस फील्ड में वो टॉपर हैं उस फील्ड में वो भी अपने आप को टॉपर बनाए। अब बता जी, ये जो एक उहापोह की स्थिति रहती है, जैसे मैंने हमेशा आपसे चर्चा की है स्पेशली यंगस्टर्स में, कि हम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें क्योंकि उसमें भी और 2-4 साल लगेंगे शायद, या फिर हम समर्पित होकर अपनी सेवाएं करें, ईश्वर की सेवा करें, विश्व की सेवा करें, ये थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति यंगस्टर्स में।
टू बी वेरी ओपन, मैं बहुत ही साफ साफ शब्दों में सबको कह देता हूं कि ये भी पढ़ाई है स्पिरिचुअल और वो भी पढ़ाई है जिसमें वो लगे हुए हैं
जी,
लेकिन अपनी पढ़ाई तो उन्हें कंप्लीट करनी चाहिए। अगर आप बीटेक कर रहे हैं और 1-1.5 साल 2 साल बचे तो उसको कंप्लीट करें, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं तो वो भी आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। अपनी मन में कोई ऐसी एक डिजायर न रह जाए कि हम और पढ़ लेते तो कितना अच्छा होता। बाकी ईश्वरीय ज्ञान ये सबसे सुंदर पढ़ाई है, और जब कोई ईश्वरीय मार्ग पे चलता है और कोई अपने जीवन को डेडिकेट करना चाहता है तब लौकिक पढ़ाई का थोड़ा सा ही महत्व है, शेष महत्व रह जाता है अलौकिक पढ़ाई का। इसमें कौन कितना होशियार है, क्योंकि ये पढ़ाई रटने वाली नहीं, ये पढ़ाई जीवन में समाने वाली होती है। जो इस विद्या में कहा जाता है उसको हमें अपना जीवन बनाना होता है, और यदि वो चीजें हमारे जीवन में साकार हो जाती हैं तो हमारे बोल का प्रभाव दूसरों पर बहुत ज्यादा होता है। अगर हम खुद नम्रचित नहीं बने, अगर हमने खुद अपने अहंकार को छोड़ा नहीं और हम पब्लिक में भाषण कर रहे हों कि क्रोध और अहंकार मनुष्य की सभी समस्याओं की मूल है, इनका त्याग करो, तो लोग सोचेंगे तो जरूर बात तो बहुत अच्छी है, पर त्याग कर नहीं पाएंगे। इसलिए इस पढ़ाई में हमने वो पढ़ाई जीवन में कितनी धारण की, कितना हम योग अभ्यास करते हैं, इतना हमारे अंदर समर्पण भाव है, इतना हमारा लक्ष्य बहुत मजबूत और बहुत ऊंचा है, इन चीजों का महत्व है। इसलिए अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके फिर हमारे सेवा केंद्रों पर रह के देखना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि ये जीवन का डिसीजन होता है, इसको जल्दीबाजी में नहीं लेना चाहिए कि फलानी बहन भी तो सेवा कर रही, मैं भी करूं। पहले वहां जाकर देखें, अच्छी तरह परखें, तुम्हें लाइफ स्टाइल पसंद है, तुम्हें इन धारणाओं पे चलना सहज रहेगा या कठिन रहेगा, या पुनः तुम्हारी बुद्धि संसार की ओर आकर्षित होगी। ये सब देखकर, सोच समझकर, विवेकपूर्ण, धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा, एक दो साल जाओ आओ देखो फिर निर्णय लेना।
जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा जी आज के सुंदर प्रकाश के लिए। हमारे सभी दर्शकों के जो प्रश्न आए थे, बहुत ही खूबसूरती से आपने उसके जवाब दिए हैं। मुझे लगता है कि उनके जीवन की सारी समस्याएं से दूर हो जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में, कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।